पृष्ठ संख्या 294 अध्याय 16 भारतीय दर्शन और उसके संप्रदाय। दर्शन को अंग्रेजी में फिलोसफी कहते हैं। यह लैटिन भाषा फिलोसोफिया से बना है। फिलोसोफिया शब्द के दो भाग हैं, फिलोस इज इक्वल टू प्रेम तथा सोफिया इज इक्वल टू ज्ञान। इस प्रकार फिलोसफी से अभिप्राय है ज्ञान के प्रति प्रेम, विद्यानुराग। विद्यानुरागी व्यक्ति चिंतनशील होता है, इसलिए उसके मन में संसार, ईश्वर, आत्मा, ज्ञान, सत्य, शुभ अशुभ संबंधी प्रश्न उठते हैं। इन प्रश्नों के समाधान के लिए वह तर्क का सहारा लेता है। यह प्रत्येक प्राणी के साथ है, इससे सभी प्राणी दार्शनिक हैं। इसको हक्सले ने दो कोटियों में विभक्त किया है, कुशल दार्शनिक और अकुशल दार्शनिक। दर्शन शब्द संस्कृत के दृश धातु से बना है, जिसका अर्थ है जिसके द्वारा देखा जाए या तत्व का साक्षात्कार हो सके, जैसे शुभ अशुभ और नैतिकता क्या है, संसार की उत्पत्ति कैसे हुई, जीव आत्मा जीवन का लक्ष्य क्या है, ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण और स्वरूप क्या है, मोक्ष क्या है, कैसे प्राप्त होगी आदि। यहाँ तत्व का साक्षात्कार से अभिप्राय है, न केवल उसके बौद्धिक व्याख्या से बल्कि उसकी अनुभूति को प्राप्त करने से। भारतीय दार्शनिकों ने अनुभूति के दो प्रकार बताए हैं, ऐन्द्रिक या बौद्धिक और अनैन्द्रिक या आध्यात्मिक अनुभूति। बौद्धिक अनुभूति में ज्ञाता और ज्ञेय दो होते हैं, पर आध्यात्मिक अनुभूति में यह भेद नहीं होता, बल्कि सीधे तत्व का साक्षात्कार होता है। इसी से भारतीय दर्शन तत्व दर्शन कहा जाता है। हिरियन्ना के अनुसार भारतीय जीवन की समस्याओं के तात्विक साक्षात्कार का उद्देश्य है जीवन में दुखों का अंत ढूंढना, यही मोक्ष की स्थिति है। मोक्ष का अर्थ दुखों से छुटकारा पाना, यही भारतीय दर्शन का लक्ष्य है। इसी से भारतीय दर्शन को मोक्ष दर्शन भी कहा जाता है। यहाँ मोक्ष की प्राप्ति आत्मा के द्वारा मानी गई है। इसी से भारतीय दर्शन में आत्मा की महत्ता के कारण इसे आत्मविद्या भी कहते हैं। भारतीय दर्शन के आधार ऊपर के विवेचन से स्पष्ट है कि दर्शन एक वैचारिक प्रवाह है। किसी भी विचार के पीछे कोई न कोई आधार होता है। भारतीय दर्शन के पीछे भी कोई न कोई चित्त का आधार होगा। इस विषय में हमारे दार्शनिकों ने दो आधार अपनाए हैं, एक कल्पना तथा युक्ति का आधार तथा दूसरे आप्त वचनों का आधार। यहाँ रहस्यमय प्रश्नों का हल, जैसे ईश्वर, आत्मा, जीव आदि विषयक प्रश्नों का उत्तर प्रत्यक्षीकरण पर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इनका साक्षात्कार हम नहीं करते। तब हम अनुभव का सहारा लेते हैं, जो कल्पना और तर्क पर आधारित होता है। फिर यह प्रश्न उपस्थित होता है कि किसके कल्पना या तर्क का हम सहारा लें, सामान्य व्यक्ति का या विशिष्ट व्यक्ति का। यहाँ दोनों को ही अलग अलग दार्शनिक संप्रदायों ने मान्यता दी है। अधिकतर दार्शनिक संप्रदाय या दर्शन शास्त्री जन सामान्य के ज्ञान एवं प्रत्यक्षानुभव को ही आधार मानते हैं, पर वेदांत मीमांसा, बौद्ध और जैन दर्शन, विशिष्ट धर्म ग्रंथ वेद, उपनिषद या विशिष्ट व्यक्ति बुद्ध महावीर के वचनों को ही आधार मानते हैं। इस प्रकार यहाँ दोनों मतों को स्थान मिला है, यद्यपि दोनों के युक्ति के प्रयोग में अंतर है। पहले में युक्ति का प्रयोग लौकिक अनुभव पर आधारित होता है, जबकि दूसरे में आप्त वचनों की पुष्टि के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह कहना कि भारतीय दर्शन स्वतंत्र विचारों से प्रेरित न होकर आप्त वचनों से प्रेरित है, उचित नहीं है, क्योंकि अधिकांश दर्शन स्वतंत्र विचारों पर आधारित है। इनके पीछे कोई आर्ष ग्रंथ या आप्त विचार नहीं रहा है। फिर भी कुछ, जैसे वेदांत मीमांसा जहाँ वेद पर आधारित थे, वही बौद्ध और जैन आप्त वचनों पर, फिर भी इनमें अपना वैचारिक पक्ष क्रमशः जुटता रहा है। भारतीय दर्शन की शाखाएं, भारतीय दर्शन का आधार एक ओर वेद है तो दूसरे ओर लौकिक विचार, पर यह नहीं समझना चाहिए कि जो लौकिक है वह वेद विरोधी है। यद्यपि एक वर्ग ऐसा भी है जो वेद निंदक या वेद विरोधी है, इसलिए जो वेद की प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं वह एक वर्ग के माने जाते हैं, जो वेद की सत्ता को स्वीकार करते उन्हें दूसरे वर्ग में माना जाता है। वेद की मर्यादा को मानने वाले आस्तिक और इसे न मानने वाले नास्तिक संप्रदाय के दार्शनिक हैं। दर्शन में आस्तिक और नास्तिक का भेद ईश्वर के मानने और न मानने से संबंधित होता है, नहीं है। आज जैसा कि आस्तिक एवं नास्तिक शब्द प्रचलित रूप में ईश्वर की सत्ता में विश्वास या अविश्वास का बोधक है। इसलिए ईश्वर की सत्ता को न मानने वाले मीमांसा और सांख्य की सांख्य भी आस्तिक ही कहे जाते हैं, क्योंकि ये वेद की सत्ता को मानते हैं। इस दृष्टि से छह भारतीय दर्शनों को आस्तिक कहा जाता है, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। इन्हें षड्दर्शन कहते हैं। षड्दर्शन को हिंदू दर्शन भी कहा जाता है, क्योंकि इसके प्रतिष्ठापक हिंदू थे। इनके विपरीत तीन ऐसे भारतीय दर्शन हैं जो वेद की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, वे हैं चार्वाक, बौद्ध और जैन। इनमें चार्वाक पूर्ण नास्तिक है, क्योंकि वह न वेद, न ईश्वर और न परलोक को ही मानता है। इसके अनुसार संसार से अलग कुछ नहीं है और मृत्यु ही जीवन का अंत है। आस्तिक या षड्दर्शन में दो दो दर्शनों का जोड़ा बना है, जिनमें कुछ बातें समान हैं, भले ही अन्य पहलुओं पर भेद हो। ये तीनों युग्म हैं, एक न्याय वैशेषिक जो ईश्वर और विश्वात्मा के विषय में एक प्रकार की धारणा रखते हैं, दूसरा सांख्य और योग जो पुरुष और प्रकृति के विषय में समान धारणा रखते हैं, तथा तीसरा मीमांसा और वेदांत, जिन्हें क्रमशः पूर्व मीमांसा, कर्म मीमांसा तथा उत्तर मीमांसा, ज्ञान मीमांसा भी कहते हैं। दोनों वैदिक संस्कृति की देन है, क्योंकि मीमांसा वैदिक कर्मकांड पर आधारित है और वेदांत वैदिक ज्ञान कांड पर। इस प्रकार भारतीय दर्शन संप्रदाय को निम्न रीति से तालिका में वर्गीकृत किया जा सकता है। भारत के दार्शनिक संप्रदाय, आस्तिक, आस्तिक दर्शन वेद पर आधारित, लौकिक विचारों पर आधारित। वेद पर आधारित के दो भाग हैं, मीमांसा और वेदांत। लौकिक विचारों पर आधारित, न्याय, वैशेषिक, सांख्य और योग। नास्तिक दर्शन तीन भाग हैं, चार्वाक, बौद्ध और जैन। भारतीय दर्शन का विकास क्रम। भारतीय दर्शन को सबसे प्रमुख भारतीय दर्शन की सबसे प्रमुख देन है उसको जीवन में उतार लेना। इसी से एक दार्शनिक मत के प्रतिपादन होते उनके अनुयायी अपना संप्रदाय बना लेते हैं। इस संप्रदाय का अनुकरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक के लोग करते रहते हैं। इससे शताब्दियों तक ये संप्रदाय चलते रहते हैं। सभी आस्तिक दर्शन वेद और उपनिषद पर आधारित है। इनके मूल तत्वों को सूत्र रूप में, सूत्र ग्रंथों में संकलित किया गया है। सूत्र रूप में संकलित करने का कारण है कि पहले ये मौखिक रूप से प्रचलित थे, पीछे इन्हें संक्षिप्त रूप में संकलित किया गया है। इनको सूत्र रूप में याद रखा जाए तथा इनके आक्षेप और समाधान सर्वविदित रहे, इन सूत्र ग्रंथों में सर्व प्रसिद्ध है ब्रह्मसूत्र, जिसमें वैदिक और उपनिषदिक दार्शनिक विचारों का संग्रह है और उनके विरुद्ध किए गए आक्षेप तथा उनके समाधान भी हैं। अन्य दर्शनों के सूत्र ग्रंथ, न्याय के लिए गौतम का न्याय सूत्र, वैशेषिक के लिए कणाद का वैशेषिक सूत्र, योग के लिए पातंजलि का योग सूत्र, सांख्य के लिए कपिल का सांख्य सूत्र, जो अब अनुपलब्ध होने के कारण ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका को मूल ग्रंथ माना जाता है, पर सूत्र रूप में संग्रहित होने के कारण ये जन सामान्य के लिए बहुत स्पष्ट नहीं थे। इससे इनके रहस्य को स्पष्ट करने के लिए बाद में विभिन्न दार्शनिक पक्षों के सूत्रों पर टीकाएं की गई। इन्हें भाष्य कहा जाता है। सबसे अधिक भाष्य ब्रह्म सूत्र पर लिखे गए। इनमें रामानुज, शंकर, श्रीकंठ आदि के भाष्य प्रमुख हैं। भाष्यों की भी अपनी अपनी दृष्टि से व्याख्याएं की गई। इन भाष्यों के मानने वालों की भी अलग अलग शाखाएं बनी। इन भाष्यों पर भी पुनः भाष्य लिखे गए, पर नास्तिक दर्शन का विकास सूत्र या भाष्य में नहीं मिलता है। भारतीय दर्शन की विशेषताएं। भारतीय दर्शन में निम्न विशेषताएं हैं। एक, भारतीय दार्शनिकों ने बुद्ध की तरह संसार को दुखमय मानकर दुख के निवारणार्थ विभिन्न मार्गों को प्रस्तावित किया। इसी के कारण प्रायः सभी दार्शनिकों ने संसार को दुख का सागर कहा। बचपन से लेकर मृत्यु तक सारा जीवन दुखमय है। इसी से सांख्य में संसार को दुख का सागर कहा गया है। इसके कारण पाश्चात्य विद्वान भारतीय दर्शन को निराशावादी कहते हैं, किंतु इन्हें निराशावादी कहना उनका भ्रम है, क्योंकि भारतीय दर्शन की परिणति इस आशा में है कि दुखों के अंत का मार्ग है। इसके लिए दुख निरोधक मार्गों को सुझाया गया है कि मनुष्य कर्म का के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति कर सके। अतः दुख दार्शनिक विचारों के उदय का कारण है, पर यह स्वयं दर्शन नहीं है। दर्शन है उसका लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति। इसी से मैक्स मुलर ने कहा है कि भारत के सब दर्शन दुखों के दूर करने के प्रयास करते हैं, जिसे उन्हें निराशावादी नहीं कह सकते। इसके पीछे एक और कारण है कि भारतीयों की प्रवृत्ति आध्यात्मिक है, आध्यात्मवाद। विलियम जेम्स के अनुसार संसार की शाश्वत नैतिक व्यवस्था में विश्वास रखता है, जिससे आशा मिलती है। 2. आत्मानम विद्धि, आत्मा को जानो, यहाँ के ऋषियों का मूल मंत्र है। इसी से भारतीय दर्शन को आध्यात्मवादी कहा गया है, पर सभी दार्शनिक संप्रदायों में आत्मा को भिन्न रूप से देखा गया है। सांख्य ने जहाँ इसे चेतन कहा है, वहीं न्याय वैशेषिक इसे अचेतन बताता है। चार्वाक ने तो आत्मा और शरीर को एक दूसरे का पर्याय माना है, शंकर ने इसी को सच्चिदानंद कहा है। 3. चार्वाक को छोड़कर सभी भारतीय दर्शनों में कर्म का सिद्धांत माना गया है। इनका मानना है कि किए गए कर्मों का फल नष्ट नहीं होता, अवश्य मिलता है, कृत प्रायश्चित तथा बिना किए हुए कर्म का फल नहीं मिलता। अकृतम्युपगमे भारतीय दार्शनिक मानते हैं कि वर्तमान जीवन अतीत जीवन के कर्मों का फल है और भावी जीवन वर्तमान के कर्मों का बताए का फल होगा। इस प्रकार अपना कर्म ही अपने भाग्य का निर्माता होता है। कर्म के 3 भेद बताए गए हैं, संचित पूर्व जन्म का कर्म फल जो अभी नहीं मिलता है, प्रारब्ध जिसका फल मिल रहा है, तथा संचयमान वर्तमान जीवन का कर्म फल जो आगे मिलेगा। पर कर्मवाद की कई आलोचनाएं की गई हैं, जैसे ईश्वरवाद तथा ईश्वर के गुणों का खंडन करता है, सामाजिक कार्यों को शिथिल बनाता है, भाग्यवाद को बढ़ावा देता है आदि। पर ये विचार उनके हैं जो कर्म से भागते हैं, पर उनके बावजूद भी यह भारतीय विचारधारा में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा लोगों में परस्पर विषमता का कारण ज्ञात होता है। यह बुरे कर्मों को करने से रोकता है, अपने पूर्व कर्म को भोग के लिए वर्तमान कर्म के प्रति संतोष देता है, तथा यह विश्वास देता है कि शुभ कर्मों द्वारा हम अपना जीवन सुधार सकते हैं आदि। 4. चार्वाक के अतिरिक्त सभी दार्शनिक संप्रदाय पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। वे आत्मा को अमर मानते हुए कर्म फल के भोग हेतु पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। इनके अनुसार मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। काटक उपनिषद में कहा गया है, अन्न की तरह मानव का नाश होता है और उसी की तरह उसका पुनर्जन्म होता है। यद्यपि इसकी आलोचनाएं भी बहुत की गई हैं, जैसे कि भ्रांतिमूलक, अव्यवहारिक, भविष्य के प्रति चिंतनशील बनाने वाला है आदि। पर आत्मा की अमरता और आध्यात्मवाद के साथ साथ पुनर्जन्म को मानता है। 5. दर्शन और जीवन का परस्पर संबंध बौद्ध, जैन और षट दर्शन मानते हैं। राधा कृष्णन के अनुसार भारतीय दर्शन जीवन के लिए है, जीने के लिए है। इसे और स्पष्ट रूप से मैक्स मुलर ने कहा है कि भारतीय दर्शन ज्ञान के लिए नहीं बल्कि सर्वोच्च लक्ष्य के लिए है, जिसके लिए मनुष्य इस जीवन में प्रयत्नशील रहता है। सभी दार्शनिक संप्रदायों ने एक ही लक्ष्य अपनाया है, दुखों के अंत के लिए मोक्ष की प्राप्ति हेतु मार्ग खोजना। 6. अज्ञानता ही बंधन का मूल कारण है। चार्वाक को छोड़ सभी दार्शनिक इस विचार को स्वीकार करते हैं, पर अज्ञानता की व्याख्या सभी में भिन्न भिन्न की गई है, किंतु इसके नाश के लिए सबने एक ही माध्यम सुझाया है, ज्ञान की प्राप्ति, जिससे मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। भारतीय दर्शन में तत्व ज्ञान को ही पर्याप्त नहीं माना गया है, क्योंकि उसका जीवन से कोई संबंध नहीं है। इसलिए यहाँ इसको निरंतर चिंतन और अभ्यास अर्थात योग को प्रधानता दी गई है। इसी से सभी दर्शनों में योग पद्धति की व्याख्या अपने तरह से की गई है। 8. चार्वाक को छोड़कर आत्मसंयम को ही सभी दार्शनिकों ने वह साधन माना है, जिससे मोक्ष प्राप्त हो सके। इसके द्वारा विचार और क्रिया में जो बुरी प्रवृत्तियां आती है, जैसे काम, क्रोध, लोभ आदि, उनको दूर किया जा सकता है। इसी से नैतिकता की भावना यहाँ प्रबल है। नैतिकता को ही वेद में ऋत, न्याय, वैशेषिक में अदृष्ट तथा मीमांसा में अपूर्व कहा गया है, किंतु इसका अभिप्राय इंद्रिय दमन से न होकर इंद्रियों के नियंत्रण से है। 9. धर्म का विचारात्मक पक्ष दर्शन होने से सभी दर्शन धर्म से संबद्ध है, पर स्पष्ट है कि दार्शनिक वाद विवाद में धर्म कहीं भी बाधक नहीं होता। 10. इनमें अतीत के प्रमाणों को महत्व दिया गया है। इसी से भारतीय दर्शन जिसका प्रधान अंग प्रमाण विज्ञान है, वेद पर आधारित न होकर वेद के प्रमाणों पर बल देते हैं, पर यह केवल आस्तिक दर्शनों के ही बात है। संसार सत्य है। 11. संसार सत्य है, यह सभी दार्शनिक मानते हैं, केवल शंकर ही इसके विरोधी हैं। उनके अनुसार ब्रह्म सत्य है और संसार मिथ्या। बौद्धों का योगाचार संप्रदाय भी शंकर से ही सहमत प्रतीत होता है।